आज हम इस सभा में सबसे पहले जो परम कृषक है, परम पिता परमात्मा, जिसने इस सुंदर धरती को बनाया, इस सुंदर धरती पे हम सबको इतना सुंदर जीवन दिया, उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करते हुए आज के इस सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। इस सत्र में अपने विशेष अनुभवों को, जो हम 3 दिन से जो योगिक खेती के बारे में सुन रहे हैं, सिर्फ हमने लेक्चर सुना, लेकिन प्रैक्टिकल में इन सब कृषि भाई बहनों ने कैसे अपने जीवन में योगिक कृषि को लाया, अपने अनुभवों को कैसे इसमें आगे बढ़ाया, कैसे परमात्मा शक्ति को अपने खेती में उन्होंने प्रयोग किया, इन सभी अनुभवों को हम सभी आज सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले सभी जो कृषक भाई बहने हैं उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी जो टोंग से आए हैं, ब्रह्मा कुमार नरेंद्र भाई जी जो इंदौर से पधारे हैं, ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी बहन जी जो सातारा से हैं, साथ में ब्रह्मा कुमारी दर्शना बहन जी। मैं इन सबसे निवेदन करती हूँ कि आप आए और इस स्टेज की शोभा को बढ़ाएं। जैसे हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम डॉक्टर के पास कभी कभी जाते हैं, इंजीनियर की जरूरत हमें कभी कभी होती है, लेकिन जो किसान है उसकी जरूरत हमें हर दिन तीनों वक्त बहुत जरूरी है। जैसे हम इस धरती माँ के लिए देखते हैं, धरती एक है, जैसे आकाश जैसे पिता के समान है जो सदा हमारी रक्षा करता रहता है। जो परम कृषक परमात्मा कितना होशियार होगा, जो एक ही धरती है जिसमें हम कोई भी बीज डाले, जैसे गन्ने का बीज डालते हैं तो उसमें मिठास आता है, जैसे हम कोई भी दूसरी जो भी फले हैं या कुछ भी जो बीज हम डालते हैं उसी क्वालिटी उसी टेस्ट का हम जैसे अनुभव करते हैं। कितना बड़ा साइंस और कितना बड़ा साइंटिस्ट परमात्मा है जो इतनी सुंदर धरती और इतनी सुंदर धरती माता को हम सभी को परमात्मा ने सौंपा है। तो आज के इस सत्र में सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जो टोंग से है, एग्जीक्यूटिव मेंबर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जो बहुत सालों से इस प्रभाग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इतनी सुंदर खेती की हुई है जो एक मॉडल के रूप में, जो सरकार ने भी बोला था कि ऐसा कोई मॉडल अगर आपके पास है तो उसकी प्रस्तुति हमें जरूर चाहिए। तो बहुत सुंदर मॉडल जो है प्रहलाद भाई ने तैयार किया है, उसमें सब कुछ जो यौगिक खेती में जो प्राकृतिक खेती जहाँ पे की जाती है तो उसकी बहुत सुंदर मॉडल उन्होंने तैयार किया है। तो आज वो अपने अनुभव हमारे सम्मुख रखेंगे कि कैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आई, परमात्मा की शक्ति और संकल्प की शक्ति से उन्होंने कैसे उस समस्या का निवारण किया। तो प्रहलाद भाई जी से हम सुनेंगे और एक बार जोरदार ताली से हम इन सभी कृषकों का सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे।
ओम शांति। समय इशारा दे रहा है, समय बहुत कम है और स्वर्णिम भारत हमें लाना है, तो अनुभव की बात यहाँ कही गई है। तो इस योगी खेती की अगर कहानी सुनाने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन 10 मिनट में ही मैं कुछ सुनाना चाहूंगा सार युक्त कि जीवन में मैं जब इस विश्वविद्यालय से जुड़ा और सत्यता का बोध हुआ, कर्म की गहन गति का ज्ञान यहाँ समझ में आया, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दे दूं। मैं सरकारी महकमे में कृषि अधिकारी के पद पे कार्य कर रहा था, लेकिन वहाँ किसानों के बीच में जाकर मैं ये रसायन खेती सिखा रहा था। यहाँ जब समझ में आया कि ये रसायन खेती तो महाविनाश का कारण है, तो इसका समाधान क्या है? शाश्वत योगी खेती, अमृत प्राकृतिक गो आधारित खेती, साथ में योग युक्त खेती। तो इस खेती को सीखने के लिए, इसको समझने के लिए योग समझना जरूरी है, और गो आधारित खेती है इसलिए गाय का महत्व समझना जरूरी है। ये दोनों महत्व जब समझ में हमें यहां मिला, तो इसका समन्वय करके हमने जो शाश्वत योगी खेती का मॉडल तैयार किया उसमें हमने पाया, और वो कुछ शेयर में अनुभव आपके बीच में करना चाहूंगा। और सबसे पहली सार की बात ये बताना चाहूंगा कि सारे विश्व की समस्त समस्याओं का अगर कारण है तो वो है हमारी वर्तमान समय रसायन खेती। समस्त समस्याओं का, चाहे वो प्रकृति की आपदाएं हो, भूकंप हो, चाहे कितनी भी सारी समस्या संसार की ले लें, उसका कारण ज्यादा से ज्यादा वो किसान है। किसान द्वारा खेती अज्ञानतावश, अधिक लोभवश की ऐसी वृत्ति द्वारा की जा रही खेती है। लेकिन अब इसको परिवर्तन करना है, तो उस परिवर्तन को लाने के लिए और सब समस्या का समाधान पाने के लिए शाश्वत योगी खेती है। शाश्वत योगी खेती को आप एक चित्रण से हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे हाथ किए हुए हैं और गिरिधर है, देखा ये चित्र नजर में आया, समस्त अतिवृष्टि हो रही है और ग्वाल बाल हैं और गाय हैं और बची हुई हैं और सब सुरक्षित हैं। यही है कंसेप्ट शाश्वत योगी खेती का। शाश्वत माना वो स्वयं शाश्वत परम पिता परमात्मा, जो अपरिवर्तनशील है, सदा ही शाश्वत है। और हम आत्माएं इस संसार जगत में आकर इस नाटक मंच पर हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं अज्ञानता के वश। तो फिर से सत्य ज्ञान का बोध होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे परम कर्षक हैं स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव। फिर साकार में अगर आए तो वो श्रेष्ठ कर सके हैं श्री कृष्ण, और फिर हैं हम सब वंशावली उनकी वंशज कर सक। तो आज आप और हम सब वापिस इकट्ठे हो रहे हैं। कराने वाला करण करावनहार वो है। तो यहां हमने पाया और उसको समझ में आया मेरे को कर्म कहन करती, तो मैं कृषि विभाग में जो काम कर रहा था वो गलत कर रहा था, पाप कर्म कर रहा था और पाप कर्म सिखा रहा था किसानों को। यहां समझ में आया कि सिखाने वाला ज्यादा दोषी है, सीख कर करने वाला बाद में दोषी है। तो मैंने ये समझ में आया अब इसको कैसे हम पाप को उतारें। तो ये शाश्वत योगी खेती का कंसेप्ट किया, प्रैक्टिकल किया। यहां हमने पाया अनुभव में कि हम अपनी स्व को परिवर्तन करते हैं, परमात्मा का संग करते हैं, मेडिटेशन को हम समझते हैं, उसका प्रयोग पहले स्वयं पर करते हैं, संस्कार परिवर्तन होता है। सबसे पहले किसान निर्वेशनी बन जाता है, पेशन वेशन वासना से मुक्त उसका जीवन हो जाता है। और फिर वो योग का प्रयोग जब कर्म क्षेत्र पर करता है, खेती पर हम करते हैं, तो जो हमारे शत्रु कीट हैं, चाहे शत्रु पक्षी हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारे खेत में, उनको हम मित्र बना लेते हैं, वो हमारे सहयोगी होते हैं। प्रकृति पांचों तत्व भी हमारी सहयोगी बन जाती हैं, क्योंकि उनके लिए हम परमात्मा प्यार देते हैं। प्रकृति जीवात्माओं को, वनस्पति को और मनुष्य आत्माओं को, ये परमात्मा प्यार जब हम बांटते हैं तो उनका सहयोग हमें मिलता है और वो सब हमारे सहयोगी बन जाते। मेरे खेत में दो अनुभव मैं सुनाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। जब हमने इसको प्रैक्टिकल किया तो हमारे पास अमरूद का बगीचा था और उसमें हमारे शत्रु बने, एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाले वो तोते पक्षी थे। तोता क्या करता है, अक्सर फल आते ही उसको कच्चे को काट देता है, पूरा नीचे गिर जाता है, या उसको कुतर देता है जिससे वो मंडी में नहीं जाता है, और फिर वो बर्बाद करने से हमारा एक तो उनको उड़ाने के खर्चा होता था, दूसरा लेकिन हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, उनको आने दिया और हमने उनसे बातें की कि आप हमारी, हम भी परमात्मा की रचना है और आप भी परमात्मा की रचना है, लेकिन आपको पालना देने के निमित्त हम किसान आत्माएं हैं, आप आइए। हमने दूसरों की तरह वहां भगाया नहीं, जबकि वहां खर्चा करके आवाज करके उड़ाते थे, हमने उनको निमंत्रण दिया, आप अपने मित्रों को भी लाइए, आप कहां जाएंगे। तो ऐसी भावना उनके साथ रखी हमने, लेकिन वो जब आने लग गए और ये कैसा मालिक है, दूसरी जगह तो हमें भगाते हैं और ये बुलाते हैं।
फिर उनके साथ हम वो आने लगे, हमने उनकी भाषा को समझा, फिर वो कहने लगे हमें यहाँ क्या करना है, आप तो अच्छे हो। तो हमने उनसे यही कहा कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का समय है, वो आ चुका है, आपकार हमारा रचनाकार है, तो आपको सहयोग करना है। तो जैसे वो चोंचे यूं हिलाते हम क्या करें, आपको इतना ही करना है कि आपको कुतरना नहीं है और कट नहीं करना है, पेट यहीं भरना है। आप जिस फल को खाना शुरू करो उसको पूरा खाओ, चाहे 4 दिन में चाहे 20 दिन में, लेकिन उसके बाद में दूसरे पे जाओ तो उनकी समझ में आ गई ये भाषा कि ये तो पेट ही तो भरना है हमें, और वो 7-8 दिन में समझ गए। और समझ के बाद में क्या किया, हमें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। जहां हमने पहले वो शुरू किया था वहां 15,000 बेनिफिट था, आमद खर्च निकालने के बाद में शुद्ध मुनाफा। जब हमने इस तरह से खेती की तो पहले साल हमारा मुनाफा हुआ आर्थिक दृष्टि से 1,80,000 रुपए का। विचार कीजिए ये लागत कम आया, क्या लागत आई, तोतों को बातें करने की क्या लागत आई, उनका फायदा देखो, हमारे मित्र बन गए। दूसरा फिर हमारा खर्चा कैसे बचा, आदमी रखते थे वो बच गया, तो हमारे उस फल को खाने वाले ग्राहक बढ़ गए, तो इसलिए हमने मंडी में नहीं जाना शुरू किया, हमने जो भाव थे क्या प्रेम से लेकर जाने लगे, तो कम लागत अधिक मुनाफा हमें मिला। दूसरी बात, कल बात चल रही थी, आप 3 दिन सुन रहे हैं जलवायु परिवर्तन, ऐसा ही मौसम बना एक बार कि गेहूं की फसल का जब पकने का समय आया वो लगातार बरसात हुई, तेज हवा आई, जो रसायन खेती से किया हमारे पड़ोसी वालों ने उनका तो न तो दाना मिला और न चारा मिला, और हमारा खेत में खड़ा था थोड़ा लुढ़का फिर खड़ा हो गया, जड़े मजबूत थी क्योंकि हमने वो विष नहीं डाला था, अमृत डाला था, जड़े मजबूत थी, वो खड़ा भी रहा, दाना भी मिला चारा भी मिला और दूसरों को। इसलिए प्रकृति भी हमारा सहयोग बनी क्योंकि प्रकृति की हमने सेवा की, पंछियों की हमने सेवा की, सबके प्रति परमात्मा प्यार बांटा, तो ये कला यहाँ हमें कुछ सीखने मिली, और वो सीखी जो कला मिली उसका प्रयोग किया तो हमें ये फायदा हुआ। इसी तरह से हमने जो संकल्प किया, एक बार ऐसी अवस्था हुई कि थ्रेशिंग की, शाम को कोई मौसम ठीक था, हम रात को 11 बज गए और सुबह उठे 3:30 बजे, ये तो आदत है हमारी उठने की, तो 3:30 बजे तो गड़गड़ाहट लिए हुए चमकीले बरसात बरसने को ही थे, और हमने जो थ्रेशिंग की थी वो ये समझ कर कि सुबह अभी तो थक गए 11 बज गए, सुबह निकाल लेंगे रख लेंगे, तो वो बोरियां अनाज वो तैयार वहीं था, लेकिन हमने उठते ही देखा ये तो क्या हो रहा है, ये तो अभी वहां से नहीं आएगा, तो पूरी मेहनत गई। तो हमने परमात्मा पिता को संकल्प दिया, ये खेती आपकी, हम तो निमित्त हैं, बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी, और अगर नहीं बिगाड़ना है तो हमें इसको लाने का मौका दीजिए। हमने तुरंत में उसको ट्रैक्टर से लाए और छाया में जो ही घुसाए ट्रैक्टर को और बरसात भारी। ये है कमाल संकल्प वाइब्रेशन की, जिसको आप हम सबको सीखना है और प्रैक्टिकल करके प्रूफ देना है कि परमात्मा के साथ हम सहयोगी बनकर निमित्त बनकर अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो 1,000 कदमों से हमारा साथ देने को तैयार है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, जो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव उनके पास है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए ऐसे बहुत सारे हजारों किसान भाई बहने हैं जो योगिक कृषि को अपनाकर बहुत मुनाफा भी अपने जीवन में पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक बहन है जो हमारे जैसे ब्रह्मा कुमारी बहन है, जो घर में जो सेंटरों पर गृह वाटिका, जो जिसमें मैं एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगी, जो वहां पे आम के सीजन में जो आम लगते हैं, जो पेड़ है, अगर पेड़ पे बहुत सारी चींटियां होती है, तो उन्होंने अगर वो चींटियां ऐसे है कि एक बार वो चिपक गई तो जब खून चूसने ही लगती है, वो बिल्कुल हम निकाल भी नहीं सकते, लेकिन उस बहन ने संकल्प किया कि हे चींटियों कि जब तक हम पूरे आम न निकाले आपको बाहर नहीं आना है। तो जैसे परमात्मा को याद करके उनको वाइब्रेशन दिया गया, जब तक पूरे आम न निकाले तब तक एक चींटी भी बाहर नहीं आए। मतलब इससे समझ में आता है कि हरेक जीव जंतु जो भी है इस सृष्टि में, भाषा नहीं समझते हैं लेकिन वाइब्रेशन समझते हैं। जैसे आप सब जब यहाँ पे ज्ञान सरोवर में आए, आपको किसी ने नहीं बोला कि आपको शांति का अनुभव करना है। जैसे ही आपने पांव रखा तो आपने शांति का, सुख का अनुभव अपने आप होना शुरू हुआ। क्योंकि हम सब जो भी बने हुए हैं एक एनर्जी है, मैं आत्मा भी एक एनर्जी हूँ, परमात्मा भी एक एनर्जी है, और हम सब जो है एनर्जी को ही फील करते हैं। तो आज जो ये सब अनुभव आप सुन रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में इन खेतों में जाएंगे जो योगिक खेती है, जैसे आप पांव रखेंगे ना, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे परमात्मा शक्ति है। ऐसे वो किरणें, जैसे जिस एरिया से मैं हूँ कर्नाटक में, जहाँ पे अनापुर गांव है, वहां पे लक्ष्मण भाई है जिन्होंने योगिक खेती की है, जो मैंने अनुभव बता रही हूँ। जैसे हम उनके प्लॉट में पांव रखते हैं तो वहां पे ऐसा अनुभव होना शुरू होता है कि जैसे किरणों की बारिश हमारे ऊपर हो रही है। जो ब्राह्मी मुहूर्त होता है, 3:30 बजे भी वो बैठ के योग करते हैं, शाम को योग करते हैं, वहां पे जो भी काम करने वाले हैं उनको उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको व्यर्थ बातें नहीं करनी है। तो मतलब एक कृषक जो है जो इतना योगी बन सकता है और बिना रासायनिक खाद के, जो आज एक चैलेंज है दुनिया के सामने, जो रासायनिक खाद को न उपयोग करते हुए परमात्मा की याद से पूरी दुनिया को शुद्ध अन्न देने का जो काम कर रहा है। क्योंकि वहां पे हमने जो 3 दिन लेक्चर सुने, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में ये जो अनुभव सुन रहे हैं। ऐसे ही और एक जो भाई है हमारे सम्मुख, ब्रह्मा कुमार नरेंद्र भाई, सक्रिय सदस्य कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग इंदौर से है, इन्होंने भी बहुत सुंदर अपनी खेती बनाई है, जो बहुत बड़े रूप में इनके पास जो जमीन है, इन्होंने वीडियो भी दिखाया था, हमने देखा है, बहुत सुंदर और सबके लिए एक प्रेरणादायी किसान ये भाई जी है। तो इनका हम अभी अनुभव सुनेंगे। नरेंद्र भाई जी,
ओम शांति। समय की सीमा देखते हुए बात है अनुभव की। 2 दिन से पिछले हम लेक्चर सुन रहे हैं, काफी कुछ आप समझ गए होंगे शाश्वत योगी खेती क्या है। मैं उसमें नहीं जाता हूं और अपना प्रैक्टिकल अनुभव कि आज आपको भी विचार चलता होगा, क्या ये संभव है? और संभव है तो क्या हमारी भावी पीढ़ी जो आगे है वो इतना इस खेती को करने के लिए तैयार होंगी? मैं अपने अनुभव के साथ अपना जो मेरा जीवन का अनुभव है उसको बताना चाहूंगा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर से पास में है। तो बचपन से किसान पुत्र होने के कारण खेती से, प्रकृति से एक लगाव रहा और उस लगाव ने हमें मतलब प्रेरित किया किसान बनने के लिए। वैसे तो पढ़ाई हमारी शहर में हुई, बचपन से इंदौर में ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, और आज का युवा क्या किसान बनना चाहेगा? आप देखेंगे, जब हम पढ़ते थे, मुझे वो बात भी याद आती है जब हम 10th या 12th स्टैंड में थे और हमारा ग्रुप बैठा था और हमारे प्रिंसिपल सर बैठे थे, उन्होंने पूछा सबको कौन क्या बनेगा। तो किसी स्टूडेंट ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कुछ कहा, और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं किसान बनूंगा। तो सबको लगा कि क्या आज भी कोई युवा ऐसा है जो पढ़ने के बाद भी उसको लगता है कि वो खेती किसानी करेगा? तो मुझे आत्मा को ये संकल्प था, क्योंकि आध्यात्मिक संस्कार मिले थे बचपन में परिवार से। तो अपनी पढ़ाई पूरी करके जब 2003 में मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया, राजयोग का अभ्यास चालू किया और अपनी खेती से लगा। पिताजी परंपरागत तरीके से करते थे, वो हमने स्टार्ट किया। फिर हमारे यूथ्स का ग्रुप बनाए कि हम क्यों ऐसी पुरानी पद्धति करें, और हमने हाईटेक खेती की तरफ। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि मैं शाश्वत योगी खेती की तरफ कैसे आया, उसके पहले हाईटेक खेती की हमने, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज किया। तो 2004 से लेके 2007 तक तो नॉर्मल जो पिताजी करते थे वो सीखा हमने। फिर 2008 से यूथ किसानों का ग्रुप बना और हमने पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, काफी जो उन्नतशील किसान थे वहां जाकर विजिट किया, और ड्रिप मल्चिंग से, और कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन लें उसके लिए बहुत ज्यादा अंधाधुन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया। मैं आज यहाँ बैठा हूँ शाश्वत योगी खेती का अनुभव सुनाने के लिए, लेकिन मुझ आत्मा ने इतना पेस्टिसाइड का यूज किया और जब ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग के संपर्क में आया तो मेरा मुझे अंतर्ग्लानी हुई, मैं ये क्या कर रहा हूं। ठीक है, पैसा कमाया, जमीन खरीदी, सब कुछ व्यवस्था की, लेकिन क्या ये कर्म की गोहिये गति देखे तो ये ठीक है? मैं लाखों की जहर खरीद करके और उसको मैं जब सब्जियों में इनमें यूज करता हूं तो वो किस किस के पेट में जाता है? किसी आत्मा ने मुझे ये उस दिन एक बात बताई जिसने मुझे झकझोर दिया कि आप इतना जहर डालते हो। तो हमने कहा भाई कैसे बचाएंगे अपनी फसलों को? तो उसने कहा कि आप कर्म की गोहिये गति नहीं जानते हो। तो मैंने कहा भाई मुझे, मैं किसान हूं, मुझे फसल का बचाव करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज तो करना पड़ेगा। उसने कहा कि और भी हमारे परंपरागत कृषि जो थी, हमारे पूर्वज करते थे, क्या वो इतना जहर यूज करते थे? तो उसने मुझे एक छोटी सी बात बता करके मेरे अंदर उस भाव को बदला। उसने कहा कि जैसे दूध रखा है, आपने उसमें एक बूंद भी जहर डाल दिया और वो जिस जिस के पेट में गया तो वो डायरेक्ट तो उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन उसको पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होगी और उसका कौन बनेगा भागी। तो मुझे अंतर मन में बहुत इसका विचार चला। उसके बाद जब मैं कृषि एवं ग्राम विकास के संपर्क में आया तो मैंने सीखा शाश्वत योगी खेती, और 2017 से फिर हमने स्टार्ट किया एक बीघा से। नहीं, जैसे आप सबको भी प्रेरित किया कि थोड़े से एरिया से स्टार्ट कीजिए, और 2017 में हमने एक मॉडल का रूप दिया जहां पर गायें तो पहले सी थी हमारे यहाँ, तो गौशाला और बड़ी की 20-25 गाय है, देसी गाय, और वर्मी कंपोस्ट, केचवे का खाद, और खेत के अंदर फिर मेडिटेशन रूम बनाया हमने, जैसे आप सब ध्यान कक्ष देखते होंगे, कुटिया जो झोपड़ी बनी इस टाइप से हमने बीचों बीच खेत के, और वहां पर एक मचान बनाया जहां पर बैठ करके हम पूरी खेती को सकास देते हैं। और ये कोई जैसे प्लानिंग नहीं थी, एक परमात्म प्लानिंग से ये सारा कार्य हुआ। मुझे तो कुछ इसका पता भी नहीं था, पर पता नहीं क्या था वो तो बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में यही कहूंगा कि उसकी प्रेरणा से, ये परमात्मा की प्रेरणा से सारा कार्य हुआ, और बीचों बीच खेत में आज हम वहां बैठकर मेडिटेशन करते हैं। एक बीघे से स्टार्ट किया, अभी 10 बीघे में, और इस बारी तो मुझे ऐसी प्रेरणा आ रही है कि मुझे सारी जमीन को, जितनी जमीन है, शाश्वत योगी खेती के द्वारा ही करना है, क्योंकि उसके जब फायदे मिलने लगे, जरूरी नहीं एक आर्थिक फायदा ही हो, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, कई प्रकार से हमें इसका लाभ जब मिलने लगा जीवन के अंदर। कैसे हम पहले प्रकृति को सिर्फ एक पैसा कमाना है, फर्टिलाइजर डाला, पेस्टिसाइड डाला, फसल आई, पैसा जेब में आया और बस हो गया, लेकिन धरती हमारी माँ है, वनस्पति के साथ, पांचों तत्वों के साथ, ये कुछ नहीं समझते थे, और आज की पीढ़ी कहाँ समझती है। लेकिन जब यहाँ आकर राजयोग सीखा और इस राजयोग की विधि से, शाश्वत योगी खेती से सीखने को मिला कि नहीं, मैं धरती पुत्र किसान हूं और धरती हमारी माँ है, प्रकृति के पांचों तत्व को मुझे अपने वाइब्रेशंस देने हैं, वो मेरी संवेदनाओं को कैच करती है। तब से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। रोज हम खेत में जाकर के बैठ करके प्रकृति के बीच में धरती माँ का धन्यवाद करते हुए, उन फसलों के बीज को, जब हम बीज बोते हैं तो बीज संस्कार विधि होती है, अमृत ब्रह्म मुहूर्त में बीजों को परमात्मा के सामने रख करके उनको हीलिंग देते हैं, बीज बोते हैं तब परमात्मा की याद में बोते हैं, हर कार्य उसकी याद में जब करते हैं तो जब फसलें निकल कर आती है तो वो जो फसलों के अंदर वो ताकत जो है, उसका जो बेनिफिट है, वो कई प्रकार से हमको मिलने लगता है। और आज जब मुझे वो बात याद आती है जब स्कूल के दौरान, तो आज मुझे गर्व होता है कि मैं धरती पुत्र अन्नदाता किसान हूं, और परमात्मा ने इतनी अच्छी विधि हम बच्चों को सिखाई है शाश्वत योगी खेती से, जिससे मुझे सारा हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत कुछ अनुभव है, कैसे हमने फसलें बोई, क्या क्या लाभ हुआ, भाई साहब ने भी सुनाया, कैसे जीव जंतु पशु पक्षी नजदीक आने लगे, और काफी उसके अनुभव हैं। लेकिन समय की सीमा है, मैं इतना ही कहूंगा कि शाश्वत योगी खेती के द्वारा, राज्यों के द्वारा जीवन में भी परिवर्तन आया और परिवार के अंदर भी, घर के अंदर भी। आज घर घर नहीं लगता है, घर ऐसे लगता है जैसे आश्रम में हम रह रहे हैं। हमारे परिवार से भी आए हुए हैं, मेरे फादर मदर पहले इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी सारा परिवार सहयोगी है। मजदूर लोग गांव में कहते हैं आपके यहाँ मजदूर कैसे काम करते हैं, 10-10 साल हो गया है, मजदूर घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पता नहीं क्या उनको वाइब्रेशंस, सिर्फ प्रकृति नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़े मजदूर कम हो जाए, वो बढ़ के आते हैं, ज्यादा ज्यादा आते हैं। नौकर भी जो भाई काम करते हैं उनको 15 साल हो गया, 12 साल हो गया है, घर नहीं छोड़ना चाहते, उस खेती में उनको इतना लगाव हो गया है, तो सभी प्रकार से शाश्वत योगी खेती सर्वांगीण विकास है हमारा, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। तब अभी मेरे अंदर बहुत दिन से संकल्प चल रहा है, मैंने विंग के सभी बड़ों को ये बात बताई है कि मुझे अपनी सारी खेती में शाश्वत योगी खेती करना है, और ये प्रेरणा हमें यहां से मिली। और इस आत्मा को, क्योंकि मैं तो बहुत निराशा में भी चला गया था, शहरों में पला बड़ा बचपन हॉस्टल्स के अंदर, और आज गांव में किसान बनकर खेती, कोई बिजनेस नहीं, कोई दूसरी इनकम नहीं 100 रुपए की, पूर्ण किसान है ना, न कोई कुछ, पिताजी भी किसान और हम भी किसान हैं, और उसी रीति से सारा कारोबार चलता है, सारा घर परिवार चलता है, और बहुत अच्छा। परमात्मा को भी धन्यवाद, और राजयोग जो हमने सीखा, संस्था को भी धन्यवाद, विंग को भी धन्यवाद जो हमें एक जीवन जीने की कला सिखाई। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी का। जो युवावस्था में ही अगर ये प्रेरणा है बहुत किसानों के लिए कि अगर हम संकल्प करते हैं तो प्रकृति भी जरूर हमें साथ देती है। जब हम एक बार अभियान में गए थे, एक बूढ़े थे जो 90 साल के थे, वो बता रहे थे कि 50 साल के पीछे ये जो गडेरिया होते हैं ना, उनमें भी इतने जो गायों को चराने वाले, जो बकरियों को चराने वाले, उनके संकल्पों में भी इतनी शक्ति होती थी। समझो बारिश नहीं हुई है तो उनको कहा गया कि बारिश नहीं हुई है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल का अनुभव बताया कि एक जो बहुत वहां पे जो बकरी चराने वाला था, जो वहां जो साउथ साइड में बहुत बड़े बड़े कंबल डालते हैं ऐसे, तो वो कहते थे अब देखो मैं कंबल फेंकता हूं, जैसे कंबल नीचे आए ना तो बारिश आने लग जाएगी। तो ऐसे मतलब इतनी संकल्पों में एक गाय चराने वाले लोगों के पास भी इतने संकल्प, मतलब प्रकृति के साथ उनका जो कनेक्शन था वो इतना प्यार का कनेक्शन था। जब किसान बात करता था प्रकृति से कि हमें बारिश चाहिए तो बारिश आ जाती थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि हम प्रकृति के सहयोग में थे। लेकिन आज हम प्रकृति के विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है, तो बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण हमारे में शक्ति नहीं है, तो हम प्रकृति को भी शक्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो कॉन्फ्रेंस जो किया गया, इसका एक ही मूल उद्देश्य है कि सबसे पहले हमें जो परम सोर्स है, परम शक्ति का स्रोत जो परमात्मा है, जब उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, हम खुद को चार्ज करते हैं, तभी हम प्रकृति के साथ भी अपने आप को बहुत सुंदर रीति से जोड़कर हम चल सकते हैं। ऐसे ही और एक हम बहुत सुंदर जो हम देख रहे हैं, दर्शना बहन जी, जो एक माता होते हुए भी इतनी सुंदर खेतों में उन्होंने योगिक खेती करते हुए इतने सुंदर उनके अनुभव है कि कैसे उनके जीवन में जो चैलेंजेस आए, प्रैक्टिकल में उन्होंने कैसे संकल्प से उनको, मतलब योग की शक्ति से कैसे उन्होंने उसको दूर किया, हम सुनेंगे दर्शना बहन जी, जो सक्रिय सदस्य है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के, जो गोवा से पधारे हैं, उनका हम अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। जरा अच्छे उमंग उत्साह से बोलिए ओम शांति। तो सबसे पहले सर्वशक्तिवान इस विश्व के मालिक करण करावनहार, हम सब मनुष्य आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, इनको यहाँ पर हाजिर है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि आप सबको भी उन्होंने यहाँ पर बिठाया है। आप सबसे वो बहुत ऊंचा काम कराना चाहते हैं विश्व परिवर्तन का। तो उपस्थित हमारे मंच पर जो है महानुभव और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले ये योगिक खेती जो है बहुत सबसे आसान खेती है, लेकिन हम समझते हैं बहुत भारी है, क्योंकि हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा इसका कंसेप्ट क्या है। नाम कोई भी दो खेती को, कोई भी नाम दो, जैसे कि देखो अगर आपने भोजन थाली में लिया है, बहुत अच्छा भोजन है, पंच पकवान है, लेकिन उसमें किसी भी चीज में अगर नमक नहीं है, भोजन का मजा आएगा? हम लोग चाय पीते हैं, बेचारे डायबिटीज वाले तो बिना शक्कर की पी लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर बिना शक्कर की चाय देंगे तो कैसे लगेगी, मजा आएगा? सेम ये बात यहाँ योगिक खेती में है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि वो ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, क्योंकि जब उसमें कोई केमिकल्स डाल के अगर हम योग का प्रयोग करने जाए तो जैसे शराबी को अगर कोई ज्ञान सुनाए वो समझ सकेगा? तो अगर केमिकल्स डालेंगे तो वो पेड़ पौधे भी कुछ समझ नहीं सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते हैं। प्रकृति प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्रकृति के बारे में थोड़ा जानना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे हम सबको शांति चाहिए, सुख आनंद प्रेम की भावना चाहिए, प्योरिटी पवित्रता शुद्धता चाहिए, सेम यही बातें प्रकृति को चाहिए। सिर्फ प्रकृति नहीं, ये जो पांच तत्व है, हवा पानी जमीन, सबको चाहिए। और ये सब अदृश्य पावर्स है, इनविजिबल पावर्स है, और मिलने का स्रोत एक ही है। कौन सा है? भगवान है ना, उसके बारे में तो आप सबने जाना है। और भगवान भी कितना आसान है, दुनिया वाले कहां कहां ढूंढते हैं। यहां सिखाया गया एक जस्ट लाइट है, याद करो किसी भी समय पर एक सेकंड में आपके पास आ जाता है। अभी मैं आपको अनुभव सुनाएंगे कैसे आ जाता है। तो कहते जैसा अन्न वैसा मन। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे, कहीं ना कहीं ये अन्न के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी उसमें नमक का जो टेस्ट उसको ऐड करना है। नमक का टेस्ट माना ही जो आप कर रहे हैं उसमें से, जो भी अभी कराने जाने वाले उसमें से सबको मजा आए, सबको सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। क्योंकि जो अन्न जिस तरह के विचार से उगाया हुआ अन्न हमारी पेट में जाता है, वो विचार इस पेट के अन्न के माध्यम से मन में जाता है। तो इंसान की बुद्धि अगर भ्रष्ट भी है तो अन्न के माध्यम से आप उसको सुधार सकते हैं। और ये बहुत देखो रहस्य की बात है, थोड़ा कम शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा आपको मैं टचअप कर देती हूँ ये क्या है योगिक खेती। अब पेड़ पौधे हमसे बात कर सकते हैं, कब से हम सुन रहे हैं ना, बात किया हमने, बोला उसको, वो बात कर सकते हैं पेड़ पौधे? मैं तो बोलती हूँ नहीं, कैसे बोलेंगे, हमारे जैसा मुंह तो नहीं है उनके पास। वाइब्रेशंस ले सकते हैं, वाइब्रेशंस को बोलने की बात नहीं है, है ना। जैसे अभी बहन जी कुछ कुछ बोल रही थे, वो कंबल, वो बकरी, हमारे अंदर से वो पिक्चराइज होते ही जाता था, हम देखते जाते थे भले वो इधर नहीं है। सेम ये योगिक खेती में ऐसा सब हम लोग प्रयोग करते हैं, करना है, आप भी सीखेंगे। तो प्रकृति हमसे बोल नहीं सकती है, लेकिन जब जैसे कि देखो जिसको हम याद करेंगे, जैसे अभी हमने कहा आम कितने मीठे हैं, आपके अंदर आम भी आ गया और टेस्ट भी आ गया, जिसकी वजह से आपके जुबान पे मिठासपन पानी नहीं आया। अभी अगर मैंने कहा जरा जुबान बाहर निकालो, मैं आपके सबके जुबान के ऊपर वो नींबू का दो दो ड्रॉप्स डाल देती हूँ, आपके अंदर क्या आया, पानी आया कि नहीं, है ना। तो ये सारी शक्ति, ऐसे ही शक्ति उन पेड़ पौधों को मिलती है, जानवरों को मिलती है, पंछियों को मिलती है। अभी मैं आपको टॉप लेवल का अनुभव सुनाती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। तो जब हम सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि भगवान को जानो पहचानो, आपने किया दो तीन दिन में, अब उससे रिश्ता जोड़ो। खाली मांगो नहीं भगवान शांति दो सुख दो आ जाओ मदद के लिए, नहीं, रिश्ता जोड़ना है। रिश्ता जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार जितना मिलेंगे उतना उतना दोस्ती बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ संबंध जुटेगा और उतना हमको उससे ज्यादा मिलते जाएगा। तो बार बार मिलने का मतलब क्या है, हर कार्य के समय थोड़ा सा मन उधर भी लगा दो, आ जाओ चलो मेरे साथ खेती में, हर बात में, उसको कहते हैं कर्म योग। अब प्रयोग तो बहुत किए, इतनी बड़ी गठड़ी है, पूरे रात में भी आप, मैं सुना सकती हूँ, एनर्जी अभी भी है उसकी। दो टॉप लेवल का मैं अनुभव सुनाऊंगी आपको। आपको पता है पिछले से पिछले साल बहुत भारी बारिश आई पूरे भारत में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी जो खेती है ना तो बिल्कुल नदी के किनारे है और घुटने भर तो कीचड़ रहता है उसमें, और बारिश आएगी तो पानी से भर जाती है। जब लगाया हम लोग ने 12 दिन के पौधे, चावल के इतने से रहते, सबको पता है ना, चावल के पौधे इतने से एक सिंगल धागे के जैसा रहता है, वो हमने लगा दिया, वो भी कैसे वो ऐसा रहे रहता ना, दूर दूर लगाते हैं वैसे पद्धति से। जिस दिन वो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खाली ऐसे लगते जाओ क्योंकि कीचड़ है, तो लगाया पूरे खेती में, और उसी दिन रात को बारिश गिरना शुरू हो गई। पूरे फैमिली ने बताया गई खेती, क्योंकि ये अभी सब गिर जाएगी कीचड़ में। लेकिन मैंने क्या किया, बस सवेरे सवेरे जल्दी उठना जरा जरूरी है क्योंकि लाइन क्लियर रहती है और अंदर कुछ नहीं चलता है। सवेरे उठा, वो भगवान को याद किया, भगवान को याद करते अंदर सारी पावर्स आ जाती है, शांति सुख जो भी जिसको चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो भगवान को याद करने से जो अंदर पावर आई, तो उसको ही कहते हैं वाइब्रेशंस। तो उस वाइब्रेशन के साथ घर में बैठकर मैंने पिक्चराइज किया, मेरी पूरी खेती को देखा और धरती माँ से बात की, हे धरती माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, भले कितनी भी बारिश आए लेकिन ये पानी जाना ही जाना है, आप बस अपने बच्चों को पकड़ के रखना, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं, जकड़ के रखना। और फिर बच्चों से बात किया, बच्चों बिल्कुल मत डरना, अरे बारिश है लेकिन वो जाने ही वाली है, आप बस अपनी माँ को अच्छे से पकड़ के रखना क्योंकि भगवान आपके साथ है। और एक लाइट, मैंने कहा ना लाइट के फॉर्म में भगवान को देखना है, तो एक ज्योति जैसे चमक रही पूरे खेती के ऊपर, उसका वाइब्रेशंस माने किरणें गिर रही है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सबने तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। 12 दिन के बाद बारिश रुक गई, पौधे इतने से थे, पानी उसके ऊपर इतना भर गया था, दिखता ही नहीं थे पूरे खेती में। तो दो दिन तो पानी जाने के लिए लगते हैं, आप सबको पता है जब पानी उतरता है तब भी बड़ी बड़ी खेती भी गिर जाती है। 17वें दिन पे जब पानी उतर गया, मैं देखने के लिए गई, मैंने क्या देखा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्या देखा होगा कि जैसे धूप में खेती बढ़ती है, धूप में खेती बढ़ती है, वैसे वो खेती लंबी हो चुकी थी, अंदर से एक भी पौधा ना नीचे गिरा, ना डूबा, ना सड़ा। क्योंकि ये प्रकृति भी भगवान का मानती है, जब जब हम पहले भगवान को याद करके उसको वाइब्रेशन डालते तो वो उन तक पहुंचते। अभी और एक बस अनुभव फिर खत्म करूंगी। वही खेती जब पक गई, अब काटने के लायक हो गई, मैं मेरी बेटी के घर गई थी 40 किलोमीटर के ऊपर, 3-4 दिन के लिए। बहू का फोन आया, जल्दी से आ जाइए आप घर में। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं बस आप जल्दी आ जाओ। मैंने क्या हो गया? मैं समझी शायद बहू में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, बड़ा जोर से होता है ना आजकल, दोनों नई नई बहू है मेरी। तो बोलने लगी नहीं बस आप आ जाओ, खेती में सब सुअर घुस गए हैं और आधी से अधिक तो खेती खा भी डाले क्योंकि दूर से तो मालूम भी नहीं पड़ता है। मैंने कहा सुअर कहाँ से आ गए, आज तक तो कभी आए नहीं थे, तो बस आप आ जाओ, जो भी करना है भी आपको करना है। तो मैंने वहां से फोन किया और जो काम वाले जो हमारे रहते सब सहेलियां गांव की, किसान अलग, उनको सब फोन करके बुला लिया। मैं भी चली गई, हम सब के सब पूरा परिवार नीचे उतरे और काटना शुरू कर दिया। अंधेरा होते होते जितना हो सका हम लोग ने काटा, 1/4 पार्ट बच गया। अब जो काटा था उसको अच्छे से प्लास्टिक से ढाप के बांध के उसको रस्सी से रखा और 1/4 पार्ट जो बचा, तो बहू बोलने लगी देखो उनकी आंखें चमक रही है, और वो जंगली जो सुअर रहते हैं ना, दांत रहते उनके बड़े बड़े, तो दिख रहे थे। तो बोले अभी तो ये खेती बचने की कोई ये चांस नहीं है, जाने दो। वो लोग ने ये सोचा, लेकिन मैंने क्या सोचा होगा, मेरे साथ कौन है? अरे स्वयं भगवान जिसके साथ है, उसके पास कभी नेगेटिविटी कोई आ ही नहीं सकती। हम तुरंत घर में गए, पूरे कीचड़ से भरे थे, नहा धोकर खटिए पे बैठ गए अपने, और सोने से पहले ही भगवान को याद कर दिया क्योंकि वो सुअर है ना अभी उधर, और भगवान को याद करके पूरे खेती को देखा और सुअर हमको देखा, और सुअरों के पास देखते वक्त बिल्कुल रहम की दृष्टि डाली और उनके साथ संकल्पों की भाषा माना अंदर ही अंदर सोचना, उनके साथ इसी को कहते बात करना संकल्पों से, और उनको कहा कि देखो आपने हमारी आधी से ज्यादा खेती खा डाली, हमको कोई आपसे शिकायत नहीं है, मुझे पता है जैसे हमको भूख लगती है आपको भी भूख लगी तो आपने खा लिया, कोई बात नहीं, अभी गलती तो हम इंसानों के जंगल काट दिए, तो आप नदी में बहते बहते गलती से हमारे खेती में आ गए, कोई बात नहीं, फिर भी हमको कोई शिकवा नहीं है। लेकिन और गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया है, जैसे कोई जानवर खेती में देखेगा उसको मार डालो, पहले ये ऑर्डर नहीं था, अभी ये ऑर्डर दिया। तो मैंने पिक्चराइज करके उनको दिखाया, देखो कैसे आपके हाल हो रहे हैं, कैसे निर्दय से आपको मारा जा रहा है, वो बेचारा तड़प रहा है। तो जैसे सबके सब जो थे वो डर के मारे पीछे हटे एक कदम, ये हमने पिक्चराइज किया कि सचमुच ही वो पीछे हटे। और फिर उनसे बोला कि देखो अभी आप कोई चिंता मत करना, मुझे पता है अभी भी आपकी नजर इस खेती के ऊपर है, लेकिन हम किसानों ने पूरी साल इधर माना जो मेहनत की खेती में, तो हमें यही चावल खाते, हम दूसरा कोई खाते नहीं, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो बची है खेती आप छोड़ के जाना, आपके साथ भगवान है, जरूर भगवान आपका कोई बंदोबस्त करेगा। देखो भगवान है हम सबके साथ, एक लाइट देकर उसके पूरे रेस पूरे खेती के ऊपर उनके ऊपर फैल रहे हैं। दूसरे दिन पहले तो बहु भागी देखने के लिए मैं तो बिल्कुल निश्चिंत थी, ये ऐसा जब प्रयोग करते तो जैसे मैं निश्चिंत थी, तो मैं गई वहां पे और मैंने क्या देखा होगा, वो जो 1/4 पार्ट जो खेती थी वैसे की वैसे थी, और वो सारे जो सुअर थे वो भी वहां से चले गए थे। तो ये है योगिक खेती, बस हमको कोई भी नेगेटिव नहीं चलाना है, और बार बार वो भगवान के साथ हमको रिश्ता जोड़ के उसके साथ बातें करनी है। आप जो यहाँ पे है आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखी है भगवान ने, आप यहाँ पे नहीं आए हैं, आपको उन्होंने लाया है, क्योंकि विश्व का परिवर्तन का समय चल रहा है, आपने सुना होगा, और उसमें आपको भी हिस्सा लेना है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों बातों को साथ में लेकर हमको जाना है, जैसा हमारा भला हो। आपके थाली में जब भी खाना आएगा तो सबसे पहले आपने एक संकल्प करना है कि इसका किसानों का क्या हो, अन्नदाता सुखी भव, माना उनके लिए पहले सद्भावना, आपसे दुआएं उनको मिले कि अन्नदाता सुखी भव, ये जो दुआ है सचमुच ही उनके पास पहुंचेगी। और रियल माना प्रैक्टिकल में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसानों के साथ थोड़ा जुड़ना होगा, उनको आगे लाना होगा, और अच्छे से अगर ट्रेनिंग है इसकी, 2 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है अपने ही तपोवन में होती है, तो और भी कहीं कहीं जगह पे रहते वैसे आपको बताया जाएगा। तो आप कोशिश करो किसानों को यहाँ पे भेजे, जब तक किसान नहीं सुधरेगा हम भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे किसान इस तरह की खेती करता है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, उसका भय चला जाता है, और फिर वो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि भले हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन भगवान हमारे साथ है, तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। इस तरह से देखो डूबी हुई खेती इस तरह से कभी भी नहीं बच सकती है, कितनों की खेती तो सब चली गई लेकिन हमारी वहां पे बच गई, क्योंकि वो हम मन से हम सिखाया जाता है कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अभी जो भी कुछ हमारे पास है भगवान ने हमको दिया है, तो सब भगवान का है, तो भगवान का है तो भगवान को चिंता, हमको क्या चिंता है। इस तरह से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, और सचमुच ही एक किसान अगर धनवान बनेगा पहले के किसान के जैसा, अगर राजा उसको बनना है तो इस तरह से उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने की जिम्मेवारी आप सबकी है। बस अभी लास्ट में थोड़ा सा एक आधे मिनट के लिए आप सब लोग खड़े हो जाओ, आधे मिनट के लिए, क्योंकि अभी समाप्ति की ओर जा रहा है, आधे मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और एक हाथ आगे करके, कोई फोटो निकालने वाले तो उन सबका फोटो निकालो, एक हाथ सब आगे करेंगे, हम सब प्रतिज्ञा लेंगे दिल से भगवान को याद करके, हाँ भगवान जी हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हैं। प्रतिज्ञा बस ये करनी है कि आप पहले मैं बताऊंगी फिर आप बोलते जाइए, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं भगवान की याद से योगी खेती को जानकर सीखकर औरों को भी सिखाएंगे, विश्व का परिवर्तन करेंगे, विश्व में सुख शांति फैलाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना बहन जी का। ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहने हैं हमारे, जिन्हों के अनुभव इतने सुंदर है कि जो भी उनके खेतों में अगर समझो बंदर आते हैं या कोई भी पंछी आते हैं, जो भी बंदर आते हैं, बंदरों को कहा जाता है कि आप आओ, आपको जितना चाहिए आप उतना खाओ, लेकिन नुकसान कुछ ना करो। ऐसे ही बंदर आते थे लेकिन खा के चले जाते थे, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होता था। ऐसे ही गोवा में और एक बहन है, ज्योति बहन है ना उनका नाम, बहुत छोटी कुमारी है वो, जो रेंट पे जैसे वो खेतों को लेकर काम करते हैं, उनका एक छोटा अनुभव, मतलब छोटी छोटी कुमारियां भी, किसान बड़े बड़े नहीं लेकिन छोटी छोटी कुमारियां भी जो बाबा के ऊपर, भगवान के ऊपर इतना विश्वास रख के, अगर हम पहले विश्वास रखते हैं अपने ऊपर और परमात्मा की शक्तियों के ऊपर, जैसे उन्होंने पीनट की जो बुआई की थी, हाँ वाटरमेलन की जो बुआई की थी उन्होंने, तो बहुत बड़े प्लॉट में, तो वहां पे मोर आते थे, जैसे जहां पे सोइंग करते थे ना पिकॉक, पता है ना, मोर आते थे जहां पे सोइंग होती थी, तो आके पूरा खाके चले जाते थे। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब उन्होंने योग सीखा, ब्रह्मी मुहूर्त में उठकर, जो 4 बजे उठकर उन्होंने योग किया, और जो जितने भी मोर आते थे उनको बोला उन्होंने कि आप हमारी खेती में आओ, आपके लिए हमने 2 लाइन रखा है, 2 लाइन आपके लिए रखा है, आप आओ और उनको खा के चले जाओ। तो इतना सुंदर अनुभव उन्होंने बताया कि मोर आते थे उसी 2 लाइन में खा के जाते थे, लेकिन कभी वो उस लाइन को छोड़कर यहाँ पे नहीं आए, लेकिन वो संतुष्ट हुए ना, पक्षी भी संतुष्ट हुआ खा के। तो उनका जो प्रोडक्शन इतना बड़ा, इतना मुनाफा उनको हुआ कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे किसानों के इतने सुंदर अनुभव है, अगर हम प्रकृति के साथ अपने आप को अगर कनेक्ट करते हैं प्रकृति के साथ, तो हमारी जो संकल्पों की भाषा, इतनी शक्ति है संकल्पों में कि वो प्रकृति, पेड़ पौधे ही नहीं, पशु पंछी भी अपने संकल्पों को कैच करते हैं, क्योंकि उनको भी प्रेम चाहिए, प्रेम की भावना जहां पे होती। इसलिए हमने देखा ना, जहां जहां ऋषि मुनि होते थे, अगर वो शेर हो, कोई भी हो, आकर उनके पास बैठ जाते थे। कैसे बैठते थे? उनके अंदर जो क्रूरता की शक्ति थी वो कैसे कम होती थी? क्योंकि शांति की शक्ति में इतना प्रभाव है, शांति कि ओरिजिनली वो जो आत्मा है उसमें भी वो शांति है, वो सुख है, वो प्रेम है। मतलब प्रेम देने से सब कुछ हम फिर से वापस पा सकते हैं। तो भगवान भी हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाता है कि आप प्रकृति से प्रेम करो। जो प्रेम करता है वो कभी उसको विष नहीं दे सकता है। अगर हम धरती माता से प्रेम करते हैं तो हम धरती माता को कभी भी विष नहीं दे सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे कहकर जब हम इस खेती की ओर, यौगिक खेती मतलब जैविक खेती की ओर अगर हम बढ़ते जाएंगे, तो जरूर ही फिर से हमारा भारत समृद्ध देश बनेगा, हम सुखी बनेंगे और सभी लोगों को शुद्ध अन्न देने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, क्योंकि देखो जब हल चलाते हैं तो भूमि का शुद्धिकरण जैसे होता है, जैसे आप यहाँ पर आए तो भगवान ने हल चलाया हमारे मन रूपी खेते के ऊपर, जो हमारे अंदर जो खरपतवार थी वो सब सफाई हो गई है ना। तो इसको शुद्ध रखना है, साफ रखना है, और शुद्ध संकल्पों का अगर हम बीज बोते हैं तो सुख शांति पवित्रता के बहुत मीठे मीठे फल हम भी खाएंगे, और जो हमारे साथ है उनको भी हम बांट सकते हैं। क्योंकि किसान का मतलब ही है जो दाता है, जो सबको देता रहता है। ऐसे हम सिर्फ अन्न को नहीं देंगे, साथ में अध्यात्म का जो सुख शांति परमात्मा का प्रेम है इसको भी हम सबको बांटते जाएंगे।
एक मिनट लेती हूँ आपका, चलेगा? एक मिनट। तो ये जो है ना, हम इंसानों के ऊपर भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज का जो चिंताग्रस्त जो किसान है वो व्यसनों की तरफ भी जा रहा है, उनके अंदर बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है। तो मेरे पति भी एक नंबर के व्यसनी थे ऐसे कोई बताते ही नहीं, लेकिन मुझे सत्यता बताने में मुझे कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। 2 बार मैंने सुसाइड करने का भी प्रयास किया, मैंने इतना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी थी, कहीं जॉब भी सब करती थी, छोड़ दो, लेकिन इसके लिए मुझे इतना सहन करना पड़ता था, उनको तो नौकरी से भी निकाल दिया था। उनके लिए डॉक्टर्स के वो तंत्र मंत्र वाले के, पहले ये नॉलेज नहीं था मेरे पास, ये तो बहुत कुछ किया उनके लिए। वो देवी आती है उसके पास भी लेकर गए, वो भी सब खिलाया, और कृपा फाउंडेशन 3 महीना कहीं पे रख दिया हुआ, रखते छुड़ाने के लिए, वहां पे कुछ फायदा नहीं हुआ, जैसे बाहर है सीधे बाहर पे चले गए। फिर जब मैंने ये सीखा कि हमारे पास वो सब शक्ति है, जो हमको चाहिए वो हमने सोचना है, बस सोचने की देरी है और भगवान से कनेक्ट होने की देरी है। तो ये प्रयोग हम इसके ऊपर भी कर सकते, क्योंकि राजू भाई जी जब हमारे घर में आए थे गोवा, वहां पे प्रोग्राम रखा था, ये हमारे मियाँ जी आधी चड्डी बटन सब शर्ट के ऊपर नीचे, बाल सब ऐसे वैसे, हाथ में शराब की बोतल लेके ऐसे खड़े रहे थे राजू भाई जी के सामने, और और अब मैं क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा ना भाई, ये हमारे युगल लेकर के पहचान तो देनी पड़ेगी। तो राजू भाई जी ने ऐसे ऊपर से नीचे उनको देखा और बोलने लगे, ये आपके युगल है? बोलने लगे, देखो आप तो प्रयोग करते थे, इसके ऊपर क्यों नहीं प्रयोग करते? तब तक मेरी सोच नहीं चली थी कि हम इंसान के ऊपर भी कर सकते। तो 3 महीना, करीबन 3 महीना बस हम रोज सवेरे उठते थे और उनको पिक्चराइज करके देख रहे थे, शराब पी के गिराए उधर सोया है अपने इसमें, और फिर उनसे बात करना शुरू करती थी मन से कि देखो आप भी एक आत्मा हो, एक लाइट हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, मुझे पता चला है कि किसी जन्म में मैंने आपको बहुत सताया है, इसलिए अभी आप मेरे से बदला रहे हो, सता रहे हो, सो मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो, मैं भी आपको क्षमा कर देता हूँ इस जीवन में जितना भी आपने सताया, लेकिन चलो अभी जल्दी जागो, आप एक आत्मा हो, देखो भगवान आया है, एक लाइट उनके ऊपर जैसे शाइन हो रही है। ऐसे 2-3 महीना करते 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 उनको बस ये संकल्प में देते रहे, चलो अभी हम नर्क को स्वर्ग करेंगे, और क्या कमाल, क्या वो भगवान की जादू कहो, कमाल कहो, क्या कहूं मैं कि धीरे से डरते डरते एक बार पूछा आप ये कोर्स करेंगे, डर डर के, क्योंकि पहले जैसे मैंने शब्द सुना तो मुझे सुनाया तो मुझे गालियां पड़ती थी, तो धीरे से पूछा आप 7 दिन का कोर्स करेंगे, तुरंत हाँ बोला, कैसे, वो भी हाँ, वो नंदी बैल होता है ना, धीरे से बोला हाँ, तो मुझे इतनी खुशी होगी अगर मैं 7 दिन का कोर्स करने के लिए तैयार हो गया ये शराबी। तो जिस दिन से उन्होंने कोर्स शुरू किया उनकी आत्म जागृति हो गई, परमात्मा से उनकी दोस्ती मिलन हो गया, मिल गया पिताजी वो सर्वशक्तिमान, और जिस दिन से कोर्स शुरू किया शराब हमेशा के लिए बंद। आज 12-13 साल हो गए, स्वभाव तो इतना नम्र, हर कार्य में मुझे मदद करते, जरा मुझे झाड़ू लगा के दो, जरा मुझे सब्जी काट के दो, क्योंकि मेरे अलग से गीता पाठशाला मैंने बांधी है, उसमें भी हर कार्य में वो सेवा मना हेल्प करते हैं, और जब मैं वहां पे नहीं हूं, कोई आता है उसको अगर वो ज्ञान सुनाना है मुरली वाला, तो बैठ के वो ज्ञान सुनाती है। कोई भी बात असंभव नहीं है
भाई, आप आओ 2 मिनट पे, आप भी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे, और एक में भविष्य में क्या होने वाला है ये बताना चाहता हूँ अनुभव के आधार पर। पहले मैंने दृश्य दिखाया, उसकी छत्र छाया में हम बने रहते हैं तो ओरा बन जाता है, प्रकृति पांचों तत्व सफाई करेगी, तमो प्रधानता जिनके साथ कर्म व्यवहार गलत है उनके साथ, लेकिन हमारे साथ मधुर व्यवहार करेगी, हमें सुरक्षित रहेगी। दूसरा मैं अनुभव सुनाना चाहता हूँ भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान ने ब्रह्मा मुख श्री मुख से कहा है कि तुम्हारे कर्ण दाना कोई लेगा वो निर्मल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सुखी अनुभव करेगा, आपके घर में कोई प्यासा आएगा एक बूंद पानी पिएगा तृप्त हो जाएगा। तो ऐसा तैयार कर रहे हैं भगवान हम बच्चों को, और उसका उदाहरण है प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग में, श्री कृष्ण जब जन्म हुआ था तो वो जब लेकर जा रहे थे तो नदी क्या उफान आ गई थी, वासुदेवाय जी जो लेके जा रहे थे उनको नंदगांव, तो उफान आ गई थी, इतना भयंकर वातावरण हो गया था विनाश जैसा, लेकिन वो प्रकृति का जल उनके उन्होंने पांव यूं नीचे कर दिया, उसको टच किया और वो नीचे शांत हो गई, रास्ता दे दिया। इसी प्रकार से हम कर्म योगी जब बनेंगे ऐसा माहौल आएगा, होगा, आपको सलाम करने आएगी प्रकृति, आपका सलाम भरने आएगी कि हमारे साथ आपने बहुत प्यार किया और हमें कोई दुख नहीं देगी, और जिन्होंने प्रकृति के साथ प्रेम नहीं किया हिसाब किताब लेगी। ओम शांत।
हम सभी प्रकृतिपति परमात्मा के संतान हैं, कोई भी धर्म से हैं, प्रकृति हमसे भेद नहीं करती है। जो भी चीज लगाते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, अनाज हो, वेजिटेबल्स हो, सभी वही रिएक्ट होके उसी टाइप से उगता है जितना अच्छा से हम मेहनत करते हैं। तो हमारी स्व अनुभूति है परमपिता परमात्मा की इस धाम से। 2017 में हम ट्रेनिंग लिए हैं 3 घंटा का। हमारे प्रहलाद भाई साहब गुरुजी हैं और ललन भाई जी नया में बाला भाई साहब अभी बहुत प्रख्यात हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है प्रकृति पति परमात्मा से हम 5 तत्व से शरीर बनी है और 5 तत्व से सारे वनस्पतियां भी तैयार है। जो भी हम खाते हैं वो भी प्रकृति पति परमात्मा का अहो भाग्य है, शुक्रिया है जो खाते हैं, जो हम बोल पाते हैं। आत्मा को भोजन चाहिए, ज्ञान गुण शक्ति, और शरीर को क्या चाहिए? अन्न। अन्नदाता पिता परमात्मा की भाग्य विधाता जो हमको इस सृष्टि रंगमंच पे भेजा है परम लोक तत्व से कुछ, वो भी हमारी फर्ज है कि इस पॉल्यूशन दूषित होने से हम बचाएं। आज विष युक्त खेती करके हम खुद को विष मुक्त नहीं हो पाते हैं और विष की तरफ जा रहे हैं और कई बीमारियां हमारे अंतर्गत आ चुकी है जो कि हम परेशान हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो शाश्वत योगिक खेती एक ऐसी खेती है जो कि हम परमात्मा को याद करके खेती करते ही हैं, प्रकृति को भी शुद्ध कर रहे हैं और अपने आप को सबसे पहला शुद्ध और स्वस्थ जीवन जीने की कला बनाते हैं। और हमारे कायिक जो हमारे अंदर में आत्मा है शरीर के अंदर, जो इसको हम पुनः शुद्ध करते हैं, शुद्ध वातावरण से और सात्विक आहार से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हमारी अनुभव है शाश्वत योगी खेती द्वारा भाग्य विधाता परमात्मा ने ठीक करेला हम लगाए हैं इसी महीने जनवरी में। बारिश नहीं हो रही थी और दिन में 42 डिग्री सेल्सियस धूप थी। बाबा को हमने कहा कि बाबा इस तरह से अगर धूप चला तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी, हम तो आपके शाश्वत योगी खेती करते हैं और आपका रहनुमाई है कि आप बरसते जरूर हैं, कृपा दृष्टि आपकी है। तो बाबा ने संकेत दिया कि रुक जाओ बच्चे, कुछ जरूर अच्छा होगा। एक दिन बाद सुबह 12:00 पे अच्छी बारिश हुई और बहुत हरियाली छा गई। हमारे वीडियो भी हैं साथ में और भाई साहब सबको दिए हुए हैं। इतना सुंदर करेला फरा जिसका जवाब नहीं है और इतना टेस्टफुल हमारे पूर्णिया कमिश्नरी बिहार में जब भेजे तो सभी ने सराहना किए। और करेला तीता नहीं, बहुत स्वादिष्ट मीठा युक्त, ये परमात्मा की शक्तियां हैं और अनुभूति है। इसी शब्दों से मैं विराम लेता हूं। ओम शांति।
धन्यवाद सभी कृषक भाई बहनों का। जो 3 दिन हमने जो सेशन सुने उसका ये सार है कि कैसे अपने संकल्पों से हम प्रकृति के साथ जुड़े और खेती भी अगर करें, अगर उसमें हम परमात्मा की याद को अपने अंदर अगर समाते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रकृति के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं कि जरूर हम बहुत अच्छे योगिक कृषि बन सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये जो सत्र है, सभी हमारे किसान भाई बहनों को हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए इनके लिए एक बार हम जोरदार ताली से इनका हम धन्यवाद करेंगे। और इसी के साथ हम सभी परम कृषक परमात्मा को 1 मिनट याद करके और संकल्प लेते हुए कि हमें भी शुद्ध खेती के ओर बढ़ना है, संकल्प लेते हुए इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का भी, जो लेट होते हुए भी आप सब आए और इतने सुंदर अनुभवों को आपने सुना, आपका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।